This is VOA News coming to you by remote. I'm Gene Randall. The death toll in yesterday's passenger jet crash in Pakistan is put at 97. Two survivors are being treated for their injuries and are reported doing well. One of them, Mohammed Zubair, said after the Airbus 320 hit the ground and burst into flames, all he could see was fire and all he heard were screams. He said he made his escape by jumping from the burning wreckage. Minutes before the tragedy, the pilot told air traffic controllers he had lost power in both engines. The plane was about to land in Karachi on a flight from Lahore when it went down in a residential area. Here in the United States, Memorial Day weekend is well underway, with Monday recognized as the unofficial start of summer. 1.8 billion Muslims around the world this weekend are marking the end of the holy month of Ramadan. But the coronavirus pandemic observes no holidays. COVID-19 is now taking close to 339,000 lives worldwide, with 5.2 million people sickened. In the U.S., the numbers from Johns Hopkins University, 1.6 million cases and 96,000 deaths. All 50 American states are reopening their economies at varying rates of speed. In Michigan, a pandemic hotspot, Democratic Governor Gretchen Whitmer has extended her declared state of emergency through mid-June. Michigan has almost 54,000 virus cases and a death toll approaching 5,200. As a contrast, the state of Texas, with almost as many cases as Michigan, is moving full speed ahead on reopening. Its population is 29 million, the largest of all the states. The daily death toll in New York is down to 84. Governor Andrew Cuomo says he's trying to make it as easy as possible for people to get tested. New York at one point was the epicenter of the pandemic. Public health officials in the U.S. are warning against complacency in practicing mitigation efforts aimed at controlling the spread of the coronavirus. A key is social distancing, but that could prove difficult during a long holiday weekend, which is traditionally celebrated with large gatherings. More news online at voanews.com. This is VOA News. President Donald Trump says churches and other houses of worship in the U.S. should be allowed to open this weekend, and says he will overrule any governor who fails to go along with his edict, though he cites no authority to do that. Most American houses of worship have been closed amid fears that drawing large numbers of people for services creates an ideal situation for the further spread of disease. The president's words are being criticized by some as a blatant appeal to his conservative political base, especially evangelicals, as Mr. Trump campaigns for re-election. Coronavirus news elsewhere. COVID-19 has quickened its pace of infections in Latin America, Russia, India, and Pakistan. With some 3,700 fatalities, India has seen its biggest single-day spike in cases yet. And the nation of 1.3 billion people counts 125,000 victims of the virus. In Pakistan, there are more than 52,000 cases and 1,100 deaths. Russia reports almost 336,000 people down with COVID-19, second only to the U.S. The country's official death toll is rising from about 3,400. Turkey has toughened its pandemic lockdown. It wants to avoid large celebrations to mark the end of Ramadan. In Latin America, Mexico and Brazil are pandemic hot zones. Brazil, where President Jair Bolsonaro long downplayed the threat of the coronavirus, now has the third highest number of cases in the world, 331,000. Brazil's hospitals are running out of space to treat COVID victims, and with 21,000 lives lost, it has become difficult to dig new graves quickly enough. In Mexico, too, the pandemic has been running rampant, more than 62,000 virus cases and nearly 7,000 fatalities. Colombia saw its largest number of new confirmed COVID infections on Friday, 801, pushing its total above 19,000. With another 30 deaths, Colombia has a fatality count of close to 700. There is far different news from China. For the first time since the COVID-19 outbreak was born in the city of Wuhan, China today has reported no new cases. Among the newest signs of economic distress in the United States, after more than 100 years in business, car rental giant Hertz has filed for bankruptcy. By the end of March, Hertz had piled up some $24 billion in debt, its operations hobbled by a pandemic that put a lid on most non-essential travel. At this point, Hertz says it has only $1 billion on hand and that the company's lenders had refused to grant further extensions on its auto lease debt obligations. Hertz also owns Dollar and Thrifty Car Rental, says Hertz CEO Catherine Marinello. No business is built for zero revenue. In Britain, children are scheduled to return to classrooms in June. Most schools in the UK have been closed since March 20th. The reopenings are to be done in stages beginning on June 1st, with 4 to 6-year-olds. Day centers will be open as well. More news online at voanews.com. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم پاکستان میں طیارے کے اس حادثے سے جس میں بہت سی جانیں گئیں اور بہت سا نقصان، مالی نقصان بھی ہوا۔ اس بارے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی آئی اے کے اسپوکس پرسن عبداللہ حفیظ خان ٹیلی فون پر۔ السلام علیکم عبداللہ حفیظ خان صاحب۔
وعلیکم السلام،
بہت شکریہ آپ نے،
بہت شکریہ پروگرام میں لینے کا،
آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ تو عبداللہ حفیظ خان صاحب، اب تک جو یہ حادثہ پیش آیا اس کے بارے میں بہت کچھ میڈیا پر ابھی تک آ چکا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ ابھی آنا باقی ہے، جب تک انکوائری رپورٹ نہ سامنے آ جائے کچھ ابھی تک تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا۔ لیکن ہم آپ سے یہ سوال ضرور کریں گے کہ یہ بتائیے کہ یہ جہاز کتنا پرانا تھا اور کیا ایسے اور بھی جہاز پی آئی اے کے بیڑے میں موجود ہیں؟
دیکھیں، یہ پی آئی اے کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ ایئر کریش، نو میٹر آپ جتنا مرضی اس کے لیے تیاری کر لیں، ٹریننگ کر لیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ سینیریو کو سیمولیشن میں ٹرائی کر لیں، کوئی بھی آپ کی ٹریننگ یا کوئی بھی آپ کا پروسیجر آپ کو تیار نہیں کرتا انسانی جانوں کے نقصان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے۔ اس حادثے کے اندر 90 سے اوپر خاندان جو ہیں وہ اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے، اور ہماری تمام تر نیک تمنائیں، ہماری دعائیں اور ہماری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ان کے لواحقین ہیں، ان پیسنجرز کے جو ہمارے ساتھ ہیں۔ پی آئی اے کی پرواز پی کے 8303 جس طرح آپ کو پتا ہے لاہور سے کراچی کے لیے آ رہی تھی، اور کراچی لینڈنگ کرتے ہوئے آن اپروچ اس کا رڈار سے رابطہ منقطع ہو گیا اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ کریش ہو گیا۔ اس جہاز میں 99 مسافر سوار تھے جس میں 91 مسافر تھے اور باقی پی آئی اے کے عملے کیا رکھے تھے۔ ابھی تک انیشل اطلاعات کے مطابق دو لوگ ہیں جو کہ موت کے اوپر بچ چکے ہیں، جبکہ باقی جو تمام صورت خاکی ہیں وہ ہسپتالوں میں شفٹ ہو گئے ہیں اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل اس وقت جاری ہے۔ پی آئی اے کا یہ طیارہ بوئنگ ایئر بس A320 رجسٹریشن الفا پاپا براوو لیما ڈیلٹا 15 سے 16 سال پرانا تھا، جو کہ ایویشن کے انڈسٹری کے اندر کوئی بہت زیادہ ایج نہیں ہے۔ جہاز اچھے طریقے سے ویل مینٹینڈ تھا اور اس کے تمام مینٹیننس چیکس آن ٹائم اینڈ سیٹسفیکٹریلی کمپلیٹ ہوئے ہوئے تھے۔ اس جہاز کے اندر بھی ایئر ورتھینس نے جہاز کو اچھے ویریفائی کر کے تمام اس کے چیکس کمپلیٹ کر کے جہاز کپتان کو سائن اپ کرایا تھا، جس نے جہاز ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد یہ پرواز اس نے کی۔ یہی جہاز ایک روز قبل مسقط سے لاہور پہنچاتا ہے ایک انٹرنیشنل پرواز لے کے، اور اس سے پہلے یہ ایکٹیو ڈیوٹی کے اندر یہ شامل تھا، اور وہاں سے یہ طیارے نے کل کے روز پی کے 8303 اسپیشل فلائٹ آپریٹ کی بٹوین لاہور ٹو کراچی۔ انیشل تحقیقات تو ابھی اس کی جاری ہیں، لیکن جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ابھی کچھ اس متعلق کہنا قبل از وقت ہوگا۔ حکومت پاکستان نے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی جس کا نام ہے SIB یا سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کو نامنیٹ کر دیا، جنہوں نے اس کے اپنے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری اور انویسٹیگیشن کرنے کا ادارہ ہے، جو کہ اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح شمالی امریکہ میں NTSB کا ادارہ فنکشن کرتا ہے۔ انہوں نے انیشیلی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور تمام جو کرٹیکل شواہد ہیں وہ کرائش سائٹ سے اکٹھے کرنے شروع کر دی، اور حکومت پاکستان نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے کہ 6 ہفتوں کے اندر وہ پریلیمنری رپورٹ حکومت کو سبمٹ کرائیں گے، اور ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ تمام تر چیزوں کے اوپر تھورلی ڈیلیبریٹ کر کے وہ پھر اس کے اوپر کرائیں گے۔ تو پی آئی اے ایز یوزر ان کے ساتھ مکمل طور کے اوپر تعاون کرے گا، وہ ٹیک لاگس، وہ مینٹیننس ریکارڈز، جہاز کی عمر، سرٹیفیکیشن، کرو کی ٹریننگز اور ان کی لائسنسنگ اور ان کی سرٹیفیکیشن کا تمام تر ریکارڈ SIB کو حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ پاکستان سول ایویشن کے ساتھ بھی تحقیق کرے گا اور وہ باقی شواہد اکٹھے کر کے پوری فلائٹ کی ٹریجیکٹری دوبارہ سے کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک انتہائی المناک اور دل خراش واقعہ ہے، اور اس واقعے کے اندر ہم اتنے ہی غمزدہ محسوس کرتے ہیں جتنا कोई भी एक एविएशन एंथुजियास्ट या कोई एयरलाइन महसूस कर सकता होगा। हमेशा ये बात कही जाती है कि एविएशन इंडस्ट्री इज द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इसका कोई हादसा होता है तो उसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है और बचने का इस्तेमाल बहुत कम होता है। हमारे साथ भी यही इस टाइम पे सूरत हाल है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उन सर्वाइवर्स का जो मौजाना तौर के ऊपर जहाज से बच गए, और वो उनमें से एक तो अपने घर डिस्चार्ज होके वापस भी जा चुके हैं। तो अल्लाह जो लोग इनके ऊपर फौत हो गए हैं उनके दर्जात बुलंद करे और उनको शहीदों का दर्जा अता फरमाए। हमारी तमाम तर दुआएं उनके और उनके अहल खाना के साथ हैं।
तो जो लवाहिकीन के लिए कुछ बंदोबस्त होगा कि उनको कुछ मुआवजा या जर तलाफी वगैरह?
देखिए, इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक हर एयर क्रैश के बाद फौरन फौरी तौर के ऊपर एक हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है जो कि एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें तमाम इदारों के सरबराह और COPIA खुद एक नर्व सेंटर के अंदर आ जाते हैं और तमाम तरह इख्तियारात और फंक्शंस वहां से कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ के ऊपर भी अब वो एक मुकम्मल तौर पर फार हो गया, जिसकी दो बुनियादी जिम्मेदारियां, एक मीडिया के साथ रिलेशंस ताकि उनको अपडेटेड इंफॉर्मेशन टाइमली दी जा सके, और दूसरा हमारा फैमिली असिस्टेंस यूनिट जो कि तमाम लवाहिकीन के साथ राता करता है और उनसे राता करके उनकी तमाम तर जरूरियात का ख्याल करता है कि अगर वो क्रैश साइट के ऊपर आना चाहे या किसी और शहर या किसी और मुल्क से अपने अपने अजीजों के पीछे वो आना चाहें तो वो उनको वहां से लेके आता है। इसी तरह मुआवजा जो भी आप पे करते हैं वो किसी की इंसानी जान की तो तलाफी नहीं कर सकता, लेकिन इनिशियली PIA का रूल के मुताबिक 5 लाख रुपए हैं जो कि बैरियल चार्जेस इमिजिएटली अदा कर दिए जाते हैं डेड बॉडी की हवालगी के साथ, जो कि आज COPIA ने जाती काविशों से तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ बात करके उसको 10 लाख रुपए कर दिया। तो 10 लाख रुपए इनिशियली बैरियल चार्जेस या तदफीन के खर्चे के तौर के ऊपर उन लोगों का जो लोग फौत हुए उनके स्पाउसेस यानी शौहर या उनकी वाइफ को दिए जाएंगे, और अगर वो मैरिड नहीं है तो उनके वालदेन को, और अगर उनके वालदेन हयात नहीं है तो बड़े भाई के सबसे बड़ी बहन को अदा किए जाए। उसके बाद इंश्योरेंस का पूरा प्रोसेस चलेगा। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिंग के एयरक्राफ्ट क्रैश के ऊपर PIA के जो इंश्योरेंस कवरेज है दैट इज अराउंड 6 मिलियन पर हेड, 60 लाख रुपए हैं जो उनको इंश्योरेंस की मदद में मिलेंगे प्लस 10 लाख रुपए पेरियल चार्जेस। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये जितने भी पैसे हों ये किसी भी सूरत में इंसानी जान की तलाफी नहीं कर सकते या किसी बिछड़े हुए इंसान का गम कम नहीं कर सकते।
तो क्या तमाम जो जो लोग फौत हुए उनकी वो हो गई है आइडेंटिटी पता लग गई है?
देखिए, अभी तक तमाम जो ह्यूमन रिमेन्स से जो डेड बॉडीज थी वो क्रैश साइट से उठा ली गई थी और वो मुख्तलिफ कराची के हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर दी गई। अभी तक काउंटिंग के हिसाब से 88 बॉडीज हैं जो कि काउंट कर ली है, जिनमें से 17 की शिनाख्त होगी। बाकियों का शिनाख्त का अमल जिस तरह आपको पता है कि एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद बॉडियों की शिनाख्त बहुत मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए हमने नादरा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ली है जो कि बायोमेट्रिक से या DNA एनालिसिस से लोगों की शिनाख्त करके उनके लवाहिकीन के हवाले।
और वो लोग जो वहाँ जो मकानों में मौजूद थे जो फौत हुए उनका हिसाब किताब क्या होगा?
देखिए, अल्लाह ने आज बहुत ज्यादा करम इस बात पे किया कि डिस्पाइट द फैक्ट कि PIA का तैयार है एक गुंजान वाले इलाके में एक घर की छत की वगैरह जमीन के ऊपर किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। 17-18 घरों को नुकसान जरूर पहुंचा, किसी के घर के अंदर हमारा पर गया, किसी के घर की छत के ऊपर हमारे इंजन गिरे, जहाज का पूरा फ्यूजलाज आधा गली के अंदर गिरा और आधा किसी की छत के ऊपर गिरा और उसके बाद उसको आग लग गई, जिसमें से 3 लोग जो ग्राउंड के ऊपर थे या जिस घर के ऊपर छत के जहाज गिरा था उसके ऊपर 3 लोग जुजवी तौर के ऊपर उनको आग लगने की वजह से उनको जख्म आए और वो बर्न सेंटर के अंदर मुंतकिल हो गए, लेकिन बाकी तमाम लोग उस मोहल्ले के उस गली के महफूज हैं और जो डैमेज घर है वो उन लोग उससे खाली करवा के PIA का जो एयरपोर्ट होटल है कराची में उनको यहाँ पे, या जो हुकूमत पाकिस्तान का एक रेस्ट हाउस है जिसको कसर नाज बोलते हैं वहां पे उनको इनिशियली शिफ्ट कर दिया गया। अदर देन दैट लोगों ने कहा कि वो साथ अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं या अपने रिश्तेदारों की तरफ शहर के दूसरे इलाके में जाना चाहते हैं, उनको इजाजत दे दी गई है या उनको मैनेज कर दिया गया और वो वहां पे हो गए। लेकिन जमीन के ऊपर किसी किस्म का जानी नुकसान अल्लाह का लाख शुक्र है कि नहीं हुआ।
बहुत सी गाड़ियां तबाह हुई जो वहां उस इलाके में जो ट्रैफिक की उस वक्त सड़क पर थी या उस जगह मौजूद थी, उनका भी कोई देखा जाएगा कि वो किसकी थी और उनको क्या मुआवजा उनको भी दिया जाएगा जिनका नुकसान हुआ?
देखिए, अभी इस बारे में हतमी तौर पर कहना बहुत ज्यादा कबल इस वक्त है, बिकॉज वो नुकसान का तखमीना भी अभी लगाया जाएगा और उस नुकसान का अजाला किस तरीके से करना है ये भी अभी डिसाइड करना है। लेकिन जो हमारे मुरवजा कवानीन थे या जो हमारी एसओपीज बनी हुई है या इंटरनेशनल रेगुलेशनी अथॉरिटीज ने हमारे ऊपर लगाई हुई, जिसमें बैरियल चार्जेस और इमीडिएटली इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन उन पैसेंजर्स की जो कि जहाज के ऊपर थे, वो पीआईए की जिम्मेदारी होती है ऑन ग्राउंड, और बाकी तमाम चीजें जो हैं उसके ऊपर अभी काम जारी है। और जिस तरीके से हमें उसके ऊपर अप्रूवल्स या बाकी तमाम चीजें हो जाएंगी, हम उसका ऐलान साथ साथ करते जाएंगे।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हाफिज खान साहब, आपने बड़ी तफसील से हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका
इसके
बेहद
लिए
शुक्रिया। ये थे पीआईए के तर्जमान अब्दुल्ला हाफिज खान, जिन्होंने बताया कि इस हादसे के बाद जो इसकी तहकीकात के बाद जो कुछ सामने आएगा उसके बाद लवाहिकीन के लिए क्या कुछ जाब्ते मौजूद हैं उनकी कंपनसेशन के लिए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक खातून नूर सहर, जो उस मकाम से बहुत करीब जिनका घर है जहाँ पर यह हादसा पेश आया, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने क्या देखा और वो इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं और उस इलाके के जो मकीन हैं वो इस वक्त किस कैफियत में हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा तैयारों को गिरते हुए, लोगों को जलते हुए, जहाज के टुकड़ों को जलते हुए देखा, जिन्होंने वहाँ की गाड़ियों को का नुकसान होते देखा। तो ये सब उनकी बातें आपके सामने हम अभी पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर सहर साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम।
नूर सहर, बहुत शुक्रिया आपने इस वक्त हमारे लिए अपने बहुत ही कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला है। कुछ बताइए कि जब आपने ये हादसा जब पेश आया तो आप कहाँ थी और आपने कैसे इसका मुशाहिदा किया और उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा?
बस बहुत बुरी फीलिंग्स थी ना कहानी। 237 पे ये क्रैश हुआ है जहाज, और बस सारी जगह धुआं ही धुआं था उस वक्त, तो समझ नहीं आया, आवाजें आई बस, और कुछ नहीं समझ आया कि हुआ क्या है।
आप कहाँ
विद
थी?
टेन
आप कहाँ थी उस वक्त?
घर में ही थे बच्चे, और हम उस वक्त नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद का टाइम है, कल फ्राइडे भी था। काफी
तो फिर क्या आपको आवाज आई, कुछ शोर हुआ, कुछ धमाका हुआ?
तेजी आवाज बहुत ज्यादा आई थी, धमाके के साथ गिरा है जहाज, और फिर सारी जगह धुआं ही धुआं था, कुछ नजर नहीं आ रहा था उस वक्त, और बहुत ज्यादा चीखों पुकार थी लोगों की,
आपका
क्योंकि जिस
घर,
घर में ये गिरे हैं।
आपका घर उससे कितने दूर था जहां ये जहाज जिसकी चपेट?
मतलब हमारी दो स्ट्रीट छोड़ के हमारे लिए घर है, मतलब एक स्ट्रीट आगे है हुआ ये सारा कुछ,
अच्छा।
तो वो गली तो बिल्कुल 4-5 घर तो बिल्कुल ही मुनदम हो गए, खत्म हो गए, और बाकी भी सारी गली को खाली करा दिया गया, क्योंकि कोई भी मतलब घर अब सेफ नहीं है वहां पे।
तो फिर आप बता रही थी कि आपने देखा सारा धुआं भर गया, तो फिर आपको समझ आया कि क्या हुआ?
जी 15, क्योंकि लाइट्स भी ऑफ हुई थी, वाईफाई वगैरह सब बंद हो चुका था, तो उस वक्त कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन 10-15 मिनट्स के बाद समझ में आया कि वो ब्लास्ट हुआ है और फिर इस तरह क्रैश हुआ है जहाज,
फिर
लेकिन
आप,
ये कि नुकसान बहुत ज्यादा
अच्छा,
हुआ है।
तो आपने खुद
जी
देखा जहाज के टुकड़े जहां गिरे?
काफी दूर दूर तक गए हैं, बहुत ज्यादा मतलब हौलनाकी थी, इतनी अफरा तफरी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, एम्बुलेंस की आवाजें 10-15 मिनट बाद आ गई यहाँ पे, बहुत शोर था।
ये फोन को ठीक कर लें लाला, ये जरा फोन को
जी जी
पास कर लो। हाँ, अब बोलो, हिलाओ मत।
आवाज
हाँ, अब ठीक है।
जी
तो फिर
जी
तो आपने खुद या आपके घर वालों ने फिर जाकर देखा कि जहाज के जो टुकड़े गिरे थे वो कहाँ कहाँ गए?
बेटा मेरा गया था वहां पे, क्योंकि वहां जो गाड़ियां पार्किंग वगैरह में थी वो सारी, उनमें भी आग लगी है, घरों में आग लगी है, लोग सोए हुए थे जोहर की नमाज के बाद, कुछ लोग आके आराम करने घरों में ही थे, अभी तक पता नहीं चल रहा कि कितने घर में कितने लोग थे, और अभी डेड बॉडीज नहीं निकल पाई, क्योंकि मलबा बहुत है घरों में, जहाज का और घरों का मलबे की वजह से अभी बॉडीज नहीं रिकवर हुई है, कितनी है क्या है कुछ नहीं पता।
नहीं, लेकिन मोहल्ले वालों को तो पता होगा ना कि इस घर में जो लोग थे वो जिंदा हैं कि नहीं हैं?
अभी तो निकला, कोई जिंदा तो नहीं निकला उन घरों में से, जो 5 या 4 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल खत्म हुए, उनमें से तो कोई भी जिंदा नहीं। 20 बॉडीज तो घरों से निकाली गई हैं। अब ये इतनी बर्न है कि वो समझ नहीं आ रही है कि वो जहां की हैं या उन घरों की हैं, क्योंकि वहां पे चहल पहल भी बहुत होती है उस गली में। नमाज के बाद सिर्फ घरों में ही लोग नहीं थे, बाहर रोडों पे भी लोग थे वहां गली में। अब
अच्छा,
कुछ नहीं समझ आ रहा कि घरों के लोग थे या बाहर के। अभी तो काफी बहुत ज्यादा मलबा है घरों का भी।
तो जब वो जहाज गिरा छत पर, तो वो जो छत थी, छतें टूट गई उस घर, उन घरों की।
यहाँ टावर्स है, काफी बड़े बड़े घर ऊपर है बने, उनपे जहाज पहले अटका है थोड़ा सा, और फिर 2-3 जगह जाके वो फिर पीसेस में गिरा है, मतलब एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, फिर ब्लास्ट हुआ है जहाज में। लेकिन ये कि बहुत हौलनाकी थी, कयामत लग रही थी।
तो कुछ गाड़ियां वाड़ियां जो गली थी, मोहल्ले में थी, वो भी तबाह हो गई।
सारी सब पूरी, मतलब समझ लें कि उस गली की गाड़ियां तो निकाली गई हैं, लेकिन उस वक्त तो कोई भी नहीं जा सकता था। बहुत ज्यादा मतलब आग ही आग थी सब तरफ,
अच्छा,
कुछ नहीं पता था कहाँ
ये भी सुनने में आया कि वहां पर, क्योंकि इमारतें बहुत ऊंची ऊंची हैं, तो जो फायर ब्रिगेड का अमला था, उसको भी कुछ मुश्किल हुई या देर से आग बुझी।
जी, ये भी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे अलाउड नहीं है इतनी ऊंची इमारतें बनाना, लेकिन यहाँ बनी भी है और गली काफी कंजेस्टेड हो गई थी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जमा हो गए थे, देखने के लिए आए हुए थे, तो उसकी वजह से कि कार्रवाई में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी भी काम जारी है, पूरी रात काम होता रहा है। 85 मेरे ख्याल से अब निकल गई है वो बॉडीज, रिकवर
तो
की है उन्होंने।
नूरु सर, आपने आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसा वाकया पहली बार ही पेश आया होगा, तो क्या इस वक्त आप क्या फील कर रही हैं जब आप देखती हैं कि खुदा की फजल।
आखिरी बार, हाँ बहुत ज्यादा, बस लग रहा था कयामत देखिए बहुत करीब से। नफे शुक्राने के पड़े कि अल्लाह ने हमारी जिंदगी बख्शी, लेकिन जो चले गए वो बहुत तकलीफ और अजियत से गए, बहुत तकलीफ उठाई है उन्होंने। बस दो मतलब जिंदा है जहाज में से जो निकले हैं, मोहम्मद जुबैर है, कोई और एक और है, वो जिंदा है, हालांकि वो पैसेंजर थे जहाज के।
और
एक तो
लेकिन
छत पे आए थे गाड़ी के, जी, एक तो शायद जंप लगाई है शायद, तो कुछ इतना मुझे क्लियर नहीं है उनका,
अच्छा,
लेकिन वहां लोगों ने निकाला।
तो अब क्या फील कर रहे हैं मोहल्ले वाले और पड़ोस वाले, वो वहां रहना चाहते हैं या वो शिफ्ट होना चाहते हैं कहीं।
अभी तो वो ट्रामा में सारे यहाँ, तो जितने भी उस घर के रिहायशी बचे थे या जो नहीं था आउटसाइडर्स थे उस गली के आगे पीछे थोड़े, वो तो अभी बिल्कुल समझ ले शॉक में है। कल से हम लोग बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बस क्या हो गया, कभी जिंदगी में ऐसा यहाँ कभी ऐसा नहीं होना, अल्लाह करे ऐसा हो आगे। उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का हादसा हो सकता है। गए हैं लोग यहाँ से, काफी मूव करा है लोगों ने, क्योंकि उनके घर तो बिल्कुल ही मिसमार हुए हैं, वो घर रहने वाले नहीं रहे। अब जिनके साथ में थे नेबर्स वगैरह, उनके तो घर भी इस काबिल नहीं रहे कि वो रहे वहां।
अच्छा नूर सर, वो आपका जो बेटा जिसने देखा, और किसी घर के फर्द ने या आपके हस्बैंड ने देखा जाकर बाहर, तो वो उनसे भी बात करा दीजिए।
वो है नहीं अभी, जैसे अपने इस वक्त घर पे ना सोए हुए, और एक जो है चले गए ऑफिस।
अच्छा,
हाँ
बच्चे भी
लेकिन
नहीं।
ये है कि हाँ, मैं जाने इसलिए भी नहीं दिया था, बेटा गया था मेरा देख के आया था, लेकिन उसके बाद वो नहीं गया, कह रहा मामा नहीं देख सकते हम लोग उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराए हुए वापिस आए और बहुत ज्यादा मतलब रोया था कि आके घर पे गए। मम्मा बहुत चीखो पुकारे से, हंगामा कयामत नहीं आ जाती, इस तरह का मंजर है उधर, कुछ
बॉडीज
नहीं
पड़ी,
समझ आ रहा।
बॉडीज
जी
देखी
जी
जलते
पूरी
हुए।
कंप्लीट बॉडीज तो थी ही नहीं, पीसेस हैं लोगों के, बर्न हुए हुए, बस बहुत तकलीफ दे टाइम गुजरा है कल हमारा वहां पे।
तो आप जानती हैं उन लोगों को जिनके घर तबाह हुए, उनसे आपका मिलना जुलना था या जान पहचान थी।
एक वो घर वहां पे है, लेकिन वो लोग अभी बिल्कुल शॉक में, कुछ भी बात करने बताने की पोजीशन में नहीं है। मेरी बेटी की फ्रेंड है वहां पे, उनका घर तो बचा है, लेकिन वो अभी भी उसकी स्मेल से, उसकी वो बेहोश है बिल्कुल, बच्ची है ना उसकी फ्रेंड, कह रही है कि घर तो बच गया सब था, लेकिन वहां की स्मेल से और ब्लास्ट वगैरह से, हंगामे से ना बिल्कुल अभी तक कोमे में है बच्ची,
और
बहुत
उनकी,
ज्यादा। और
और जो उनके
जी
वालदेन हैं, वो होश में हैं।
वो मैं बच्ची से पूछूंगी, वो तो अपनी फ्रेंड का मुझे बता रही थी, मम्मा 2-3 दोस्त है गई मेरी तो देखा, तो वो हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो उसकी हालत ठीक है। बहुत ज्यादा इतना शोर, इतना हंगामा था, तकरीबन शाम तक तो यहाँ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और फिर फौज वगैरह भी आई थी, उन्होंने मना किया उस साइड आने। घर बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट्स पे आए हुए हैं, कुछ टिके हुए एक दूसरे से, तो वो कुछ किसी वक्त भी गिर सकते हैं, तो वो घर खाली कराए जा रहे हैं उस गली के सारे। पांच तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं घर, उसके अलावा जो है उसके तकरीबन घर होंगे तकरीबन एक रो में 12-13 घर है, तो समझ ले वो सारी खाली करा दिया। कभी नहीं सोचा, मेरे हस्बैंड तो यहाँ काफी टाइम से बचपन गुजरा है उनको इसी जगह से, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना था ना देखा एयरपोर्ट है यहाँ पे करीब, कभी नहीं ऐसा हादसा हुआ।
जी
अल्लाह पाक ना हो आगे कभी ऐसा, वहां पे
कुछ कहना
कुछ
चाहेंगी, कुछ भी आप इस वक्त जो कहना चाहें, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, आप क्या कहेंगी इस वक्त?
बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ईमान पे खात्मा हो, और ऐसी नागहानी जिन लोगों पे आई थी अल्लाह पाक उनको सबर दे। बहुत मुश्किल टाइम गुजरा है उन फैमिलीज के लिए जिनके चले गए लोग और वो पीछे रह गए, और जिन्होंने ये मुश्किल टाइम गुजार के इस दुनिया से गए। शहादत के दर्जात तो हैं, लेकिन बहुत बहुत तकलीफ दे टाइम गुजरा है उन लोगों पे बहुत ज्यादा।
बेहद शुक्रिया नूर सहर, बेहद शुक्रिया, खुदा ताला आपको हौसला दे, और आप जिस ट्रॉमा से इस वक्त आप सब लोग गुजर रहे हैं उनसे आपको अल्लाह मियाँ निकाले, और आप दोबारा से जल्द अज जल्द अपने जो जहनी कैफियत है उस पर नॉर्मल लाइफ में वापस आएं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये थी कराची की नूर सहर, जो उस मकाम से बहुत करीब रहती हैं जहाँ पर तैयारी का ये हादसा पेश आया था। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खसूसी शो के साथ। पाकिस्तान में हवाई जहाज़ का सानहा पेश आया और इस सानहे में बहुत सी जानें गईं और बहुत सा नुकसान हुआ, माली नुकसान भी हुआ, और ऐसे मौके पर हुआ जबकि पाकिस्तान पहले ही कोरोना वायरस के हवाले से परेशानी का शिकार था, और ऐसे में हुआ कि ईद भी तकरीबन अब आने को है और बहुत ही बुरे हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन पर मौजूद हैं ARY के सीनियर सहाफ़ी और एविएशन शोबे के माहिर मोहम्मद सलाहुद्दीन, जो खुद वहाँ उस जगह पर गए जहाँ पर ये हादसा हुआ, सानिया हुआ। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या इन्होंने देखा, और उसके बाद इनसे पूछते हैं कि क्या अपडेट्स थी, क्या अपडेट्स हैं इस सानहे के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब।
वालेकुम अस्सलाम। जी
मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब, आप बताइए कि आपने उस जगह, आप खुद भी मौजूद थे, आप पहुंच चुके थे, तो क्या देखा आपने और क्या कैफियत थी उस वक्त?
देखें, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। ये ईद से कबल जो है वो PIA की परवाज थी, PK 8303, जिसने लाहौर से उड़ान भरी थी कराची के लिए, और तकरीबन ये बदकिस्मत तैयारा कराची पहुंच चुका था, अप्रोच पर था, लैंडिंग था, लेकिन इसमें अचानक फनी खराबी पैदा हो गई और एक मॉडल कॉलोनी के करीब चिना गार्डन का एरिया है वहां पर एक इमारत पर गिरकर ये तबाह हुआ, जिसमें कीमती इंसानी जाने जाया हुई। बड़ा अफसोसनाक वाक्य था, हम खुद वहां पर मौजूद थे और तमाम चीजें वहां रिपोर्ट कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वहां बहुत सारी इमदादी टीमें पहुंच चुकी थी, सिविल एविएशन अथॉरिटी के फायर टेंडर पहुंच चुके थे, रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी थी, फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी थी, और अपना एम्बुलेंसेस वगैरह सारी पहुंच चुकी थी। लेकिन वहां हमने दो चीजें देखी कि खासा एक रश लग गया था, लोग मतलब तमाशबीन जिसे कहें कि इमदादी टीमों को खासी दुश्वारी पेश आ रही थी कि वहां से रेस्क्यू करने में, डेड बॉडीज को निकालने में, हॉस्पिटल पहुंचाने में, तो वहां पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवान वहां पर पहुंच चुके थे जिन्होंने कंट्रोल संभाला, लोगों को वहां से हटाया, रेस्क्यू के अमल की जो दुश्वारी पेश आ रही थी उनकी उनकी मदद की वहां पे, ताकि इमदादी सरगर्मियां जारी रखी जाए। तो बड़ा मतलब कहना बहुत हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इतना मतलब पाकिस्तान की तारीख का ये बड़ा सानिया था इस साल का, जो है वहां पे मतलब हर लोग परेशान थे, हर आंख अश्बाती जज्बाती मनाजिर देखने में आ रहे थे। जाहिर है
जिनके प्यारे इस हादसे का शिकार हुए या जिस घर के ऊपर गिरा था, वो लोग जो इस हादसे का सबब बने, तो वहां बहुत एक कयामत का मंजर था और बहुत सारी चीजें हमने देखी। तो इस हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से भी एक सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, एक टीम तश्कील दे दी गई है जो इस तैयारे हादसे की तहकीकात करेगी, बाकायदा तौर पर इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएंगी। लेकिन जो हमें इतला मौसूल हुई कि जहाज का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसके उसके जरिए से मदद हासिल हो सकेगी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इसमें 30 घंटे, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। जब ये डीकोड होगा, डीकोड के बाद उसमें तमाम चीजें आ जाएंगी कि आया कंट्रोल टावर से क्या रब्ता हुआ था, क्या जहाज में फनी खराबी हुई, तो खैर ये लंबा एक प्रोसेस है। तो दूसरा, हमने एक चीज भी ट्रैफिक कंट्रोलर से भी हमें कुछ चीजें मिली कि आया कि इसमें बहुत सारी कुछ चीजें सामने आई हैं। जब जहाज जब अप्रोच करता है कराची के लिए, एक पॉइंट है एविएशन के हवाले से, ट्रैफिक कंट्रोलर के हवाले से, तो इसको ये मातली कराची कहलाता है। 15 नॉटिकल माइल जो अप्रोच पॉइंट होता है, जिसमें मैक्सिमम 5000 फीट बुलंदी पर होने चाहिए जहाज को, तो लेकिन ये जो बदकिस्मत तैयारा था पीआईए का, ये 10000 फीट बुलंदी पर था, जिस पर कंट्रोल टावर ने कप्तान को टोका और रोका कि जी आपकी हाइट ज्यादा है, आप इसकी हाइट को कम करें। तो उस पर कप्तान ने कहा कि आई मैनेज, मैं इसको मैनेज कर लूंगा। लेकिन फिर जब सेकंड टाइम ये इसको 3000 फुट पर होना चाहिए, तो जहाज 7000 फुट पे था, तो उसके बाद फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रोका कि आपकी स्पीड फिर ज्यादा, हाइट ज्यादा है, तो उसको कम करें। लेकिन ये 1200 फीट पर जब पहुंचा, तो कप्तान ने लैंडिंग गियर को डाउन नहीं किया, क्योंकि पहले ही एक आगे नोज व्हील के जो लैंडिंग गियर था उसको कम थी, तो कप्तान ने बेली इसको टच किया है। बेली टच करने के तैयारे के एक इंजन में से चिंगारियां निकली, और उसके बाद उसने कप्तान ने तैयारे को वापस गो राउंड की तरफ लेके गया, जो लेफ्ट साइड पर गया, तो उसके बाद इसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया था, जिस पर कप्तान ने मेडे मेडे चिल्लाना शुरू कर दिया। मेडे मेडे का मतलब था इंतहाई इमरजेंसी। तो उसके बाद जो है ये सूरत हाल सामने आई और तैयारा हादसे का सबब बना शिकार। लेकिन ये अभी कबल अज वक्त होगा कि आया कि इसमें क्या, किसकी गलती थी, क्या था, क्या फनी खराबियां पैदा हुई, तो ये बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो उसके मुकम्मल तौर पर तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि आया कि ये इसमें वजूहात क्या हुई थी, क्या फनी खराबी हुई थी, लैंडिंग गियर में मसला हुआ था, या तैयारे के इंजन अचानक बंद हुए तो क्या वजूहात हुई थी। ये एक इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आएगी उसकी चीजें सामने आएंगी। लेकिन तमाम रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं और जहाज के जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, पाक फौज के जवान, पाक फजाइया और रेंजर्स, पुलिस और दीगर इमदादी टीमें इस जो है वो इमदादी सरगर्मी में मौजूद है। वफाकी वजीर भी गुलाम सरवर खान जो जो है वफाकी वजीर बराए हवाबाजी है, वो भी आज पहुंचे हैं। काला सत्ता का इजलास भी यहाँ पे उन्होंने किया है और तमाम चीजें उसको मॉनिटर की जा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने भी खसूसी तौर पर उस पर तहकीकती कमेटी की मंजूरी दी है, वो भी इन्वेस्टिगेट करेगी। और इस तरह से ये इसकी तहकीकात का भी अमल जारी है और मलबे का हटाने का काम भी जारी है, ताकि इसको 2 से 3 दिन लगेंगे। पीआईए के सीईओ एयर मार्शल अरशद मलिक ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 3 दिन जो लगेंगे मलबे को इसको हटाने में। तो इमदादी सरगर्मियां अभी तो जारी है, लेकिन बहुत अफसोस, बहुत दुख की बात है कि ईद की खुशियां जो कराची के लोगों के मान पड़ गई था, बड़ा सानिया पेश आया पीआईए के तैयारे का। ये एयरबस 320 था जो कि 2014 में पीआईए के बेड़े में ये शामिल हुआ था, और जबकि पीआईए के सीईओ एयर मार्शल अरशद मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मुकम्मल तौर पर इसके तमाम टेक्निकली कंप्लीट थी, सर्टिफाइड था अब, लेकिन जो ये हादसा हुआ है तो अब ये कहना कबल इस वक्त होगा, जब तक इसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। तो ये एक चीज है, सिलसिला एक चल रहा है यहाँ पे।
ठीक जी, तो इस तरह के कुछ कुछ और तैयारे भी उसमें शामिल है पीआईए के तैयारों के बेड़े में?
बिल्कुल, एयरबस 320 तैयारे पीआईए के पास हैं, बोइंग 777 तैयारे पीआईए के बेड़े में हैं, एटीआर तैयारे हैं। तो ये मतलब ये ज्यादा पुराना 2014 में इंडक्ट हुआ था पीआईए के बेड़े में
तो कहाँ
एयरबस थ्री ट्वेंटी
किसने कहाँ का बना हुआ है ये तैयार कहाँ से है?
ये एयरबस तो फ्रांस से बनता है, जबकि इसका ब्लैक बॉक्स जो मिला है वो जाहिर है जो तैयारा साहस कंपनी को ही भेजा जाएगा, वो ही इसे डिकोड करेगी। तो इस तरह से उनकी टीमें भी, जराय का ये कहना है कि उनकी टीमों को से भी रब्ता है और वो भी टीमें भी पाकिस्तान का दौरा कर सकती हैं चीजों के, वो भी इन्वेस्टिगेशन में उनको भी शामिल किया जाता है। तो लेकिन अभी फिलहाल जो है वो एसआईबी की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई है, जिसे सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड कहा जाता है।
हाँ नहीं, लेकिन इसकी आपने कहा 2014 में शामिल हुआ था, लेकिन इसकी उम्र क्या है इस वक्त, कितनी उम्र का था ये तैयारा?
नहीं, इसकी उम्र तो अभी है उड़ान भरने की, इसके सर्कल तो चल रहे हैं अभी, क्योंकि जो तैयार साज कंपनी होती है जिनसे ये ट्रायल लीज या वेट लीज पे लेते हैं तो वो खुद उसको मॉनिटर कर रही होती है। जब इसके सर्कल पूरे हो जाते हैं तो वो उनको बाकायदा तौर पर पीआईए को इन्फॉर्म कर देंगे, जी अब इसकी मुद्दत पूरी हो गई है तो आप इसको ग्राउंड कर दें, हमें वापस कर दें। लेकिन अभी इसकी लाइव है उड़ान भरने के हवाले से, तो इसमें कोई ऐसी ज्यादा पुराना भी नहीं है, तो अभी लाइव बाकी थी। लेकिन
नहीं,
लाइव
कहा
इसकी
सुनने में यही आ रहा है, सुनने में यही आता है ना आमतौर पर कि ये बहुत पुराने तैयारे हैं जिनको इस्तेमाल करते रहते हैं और बहुत सारी खराबियों के बावजूद उसको ऑपरेशन उनका जारी रखते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं कि इसकी ये बहुत ही कोई पुराना तैयारा था जो वक्त पर, और दूसरे कितने अरसे से ये पहली बार उड़ा ये जो लॉकडाउन के बाद?
नहीं, लॉकडाउन के बाद ये सेकंड टाइम था, क्योंकि जब जब उड़ान भरने से पहले बाकायदा इसकी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की एयरवर्दीनेस की टीमें होती हैं वो उसको चेक करती हैं उड़ान भरने से पहले, उसको सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, फिर कप्तान उसको चेक करता है और जब मुकम्मल सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद ही उड़ान भरता है, उसको कप्तान उसको लेकर उड़ता है। लेकिन अब जाहिर है एक मशीनरी है, फनी खराबी कभी भी कभी हो सकती है इसमें तो, लेकिन इन तमाम पहलुओं का, इन चीजों का जायजा लिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो जो भी इसके नतीजे आएंगे तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आया कि इसमें गलती कप्तान की थी या जहाज में कोई फनी खराबी पैदा हुई, ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसे कैप्टन उसे कंट्रोल नहीं कर सका। तो अमूमन ऐसा होता है कि अगर एक इंजन शटडाउन हो जाता है तो दूसरे इंजन पे अप्रोच हो जाती है, या इसको हंगामी लैंडिंग भी हो सकती थी, लेकिन ये क्या वजूहत हुई कि कप्तान से ये तैयारा नहीं संभल सका कि एक आबादी वाले इलाके में जाके गिरा है, उस तमाम पहलुओं का जो है उस पे तहकीकात की जाएंगी और तमाम उसको, और बाकायदा इसकी रिपोर्ट मंजरेआम पे भी लाई जाएगी, ये कहना है जराय का कि इसको पब्लिक भी की जाएगी, जो भी इसमें चीजें होंगी वो और उसको बताया जाएगा। तो इस तरह से अभी
तो क्या ख्याल है आपका कि अब जबकि ये हादसा पेश आ गया और अभी नई नई तो ये फ्लाइट दोबारा शुरू हुई थी अंदरूने मुल्क, तो क्या मजीद जो फ्लाइट्स हैं उनका सिलसिला तवक्को की जाएगी कि वो जारी रहेगा या अभी फिर से रोक दी जाएंगी फ्लाइट्स?
नहीं, देखें दुनिया भर में तैयारे हादसे होते हैं और ऐसा नहीं होता कि अगर तैयारे का हादसा हो गया तो ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है, नहीं, ऑपरेशन तो जारी रहेगा। और ये तमाम इसमें ये होता है कि मजीद सख्तियां हो जाती हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से, कि मतलब कोई भी तैयारा उड़ान भरने से पहले उसकी मुकम्मल जांच की जाती है, एयरवर्दीनेस होती है, एयरवर्दीनेस की टीमें होती हैं उसको चेक करने के बाद उड़ान भरने की इजाजत देती है। और ये इस पे अब हादसे के बाद अमूमन अब ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे तो कोई भी जहाज उड़ने से पहले पहले सीए की टीमें उसको मुकम्मल जांच करेंगी, पर उड़ने की इजाजत दी जाएगी, ऑपरेशन नहीं रुकेगा और इस तरह से ऑपरेशन जारी रहेगा और साथ साथ इस तैयारी की जो एयरबस 320 तैयार है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी रहेगी। जी
सही, तो बस यही हम सोच रहे थे कि अब लोग तो डर गए होंगे ना कि अब हम जाएं कि ना जाएं, ये जो इस वक्त शुरू हुई है परवाजें, तो यही मेरा सवाल था कि क्या आप देख रहे हैं कि लोग अपनी परवाजें जो उन्होंने कहीं जाना था ईद के मौके पर तो मनसूख तो नहीं करने का सोच रहे, क्या ऐसा है?
नहीं, मनसूख तो नहीं कर रहे, ऑपरेशन जारी है, सीओ से हमने पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि नहीं जी तो, और ऑपरेशन, लेकिन खौफ तो जाहिर है एक होता है, इससे पहले भी तैयार है गिरा था निजी एयरलाइन का, तो दूसरे दिन हमने देखा एयरपोर्ट पर खासा रश था, वैसे मुसाफिर जा रहे हैं और सफर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में दुनिया भर में जो तैयारे के हादसात होते हैं तो उसपे एयर ट्रेवल وقتی طور پر تو ایک نفسیاتی اثر ضرور پڑتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ظاہر ہے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، ثانیہ ہوا ہے، لیکن یہ آپریشن رکتے نہیں ہیں، یہ جاری رہتے ہیں، اور پی آئی اے نے بھی اپنا آپریشن ابھی فی الوقت جو ہے وہ ڈومیسٹک جاری رکھا ہوا ہے، اور انٹرنیشنل تو پہلے ہی ایک اسپیشل فائٹیں چل رہی ہیں جو مطلب دنیا بھر میں جو پاکستانی پھنسے ہوئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ان کے لیے بھی آپریشن جاری ہے، تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، فلائٹ آپریشن رکے گا نہیں پی آئی اے کا، تو وہ جاری رہے گا میں سمجھتا ہوں، اور پی آئی اے کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ آپریشن رکے نہیں.
بہت شکریہ محمد صلاح الدین، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ پی آئی اے کا جو طیارہ کریش ہوا اس کی بظاہر کیا وجوہات تھیں کریش کی، اور یہ کیا آئندہ کی جو تحقیقات ہیں وہ کیسے سامنے آئیں گی، کب آئیں گی، اور اس وقت جو کاروائی ہے ملبے کو ہٹانے کی وہ کس طرح انجام پا رہی ہے. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. یہ تھے اے آر وائی کے سینئر جرنلسٹ اور ایویشن کی رپورٹنگ کے ماہر محمد صلاح الدین. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، اور بریک کے بعد ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
پی آئی اے کا طیارہ جو کریش ہوا، اس کے کچھ ایسے پہلو ہیں جن پر اس وقت ہماری ساتھی مدثرہ منظر نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے ان کی رپورٹ سنتے ہیں.
پی آئی اے کا طیارہ لاہور سے روانہ ہوا تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، مگر کراچی پہنچ کر رن وے پر اترنے سے چند دمے پہلے کیا ہوا کہ طیارہ رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا. پی آئی اے کے سی ای او ارشد ملک کہتے ہیں کہ اس کا علم تحقیقات کے بعد ہی ہوگا، اور تحقیقات میں وقت تو لگتا ہے. محمد ارشد قریشی جمعے کی نماز مسجد میں پڑھ کر خوش تھے کہ اتنے بہت سے دنوں کے لاک ڈاؤن کے بعد مسجد میں جانے کا موقع ملا.
تو ہم جمعے کی نماز مسجد میں ادا کیے تھے جو بھی ایس او پی ہے اس کے تحت کافی عرصے کے بعد، اور جب میں نماز پڑھ کے نکل رہا تھا تقریباً ٹائم 2:36 جو 37 پاکستان کا وقت کے مطابق دوپہر کا ٹائم تھا، اس جگہ پہ میرا گھر ہے جہاں روز ہی ہماری چھت کے اوپر سے جہاز جاتے ہیں اور سامنے رن وے ہے. تو یہ جو جہاز نظر آیا تھا، یہ اس میں میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس میں آواز بالکل نہیں تھی، تو بڑی اور اس کی جو نظر آ رہا تھا وہ اوپر نیچے ہچکولے سے لے رہا تھا، تو ایک خوف تھا کہ اس میں آواز بالکل نہیں ہے. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ ایک دم گرا ہے، اور جہاں میرا گھر ہے اس سے دوسری یا تیسری گلی میں وہ گر گیا ہے، اور اس کے بعد میں فوراً اپنے گھر پہ آیا ہوں اور گھر کو دیکھنے کے بعد اس گلی میں گیا ہوں، تو وہاں بہت بڑا ایک آگ کا بگولا اٹھا ہوا تھا اور محلے کے لوگ وہاں امدادی کاروائیوں میں مصروف تھے. تھوڑی دیر کے بعد پاکستان رینجرز اور آرمی کے لوگ آ گئے تھے، اور پھر اس کا ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ پی کے 8303 کی فلائٹ تھی جو 2:40 پر رن وے پر اس کو اترنا تھا، کیونکہ رن وے بالکل سامنے ہی تھا اور یہ کاظم آباد کا علاقہ ہے اور ملیر کینٹونمنٹ کے بالکل قریب ہے، اور یہ اس جگہ پہ آ کے یہ گر گیا ہے. اور جب تک میں وہاں موجود تھا تو 30-35 ڈیڈ باڈی نکالی گئی تھی، لیکن اس کے علاوہ جس مکانوں پر وہ ہٹ ہوا ہے اور جو گرے ہیں وہاں 4-5 مکانوں میں آگ لگی ہوئی تھی. تو اور کیونکہ چھٹیاں آج سے ہو گئی ہیں عید کی، تو گلیوں میں تمام گاڑیاں پارک تھیں، ان سب میں آگ لگ گئی تھی.
اس حادثے کے بعد سب سے زیادہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایئرپورٹ کے قریب اس رہائشی کالونی کی تعمیر ہے. چودھری اعظم پی آئی اے کے ایک سابق انجینئرنگ افسر ہیں، وہ کہتے ہیں اس کالونی میں خود پی آئی اے کے عملے کے لوگ بھی مقیم ہیں.
ہاں عمارتیں ہیں، رہائشی علاقہ ہے یہ، لیکن اس میں جو خرابی ہے سول ایویشن جو ہے اس نے قانون تو موجود ہے کہ یہاں کوئی بھی عمارت اگر بنائے گا تو 30 یا 35 فٹ سے زیادہ ہائٹ انکلوڈنگ ٹاور، لیکن یہاں پہ لوگوں نے کئی کئی منزلہ عمارتیں بغیر پرمیشن کے بنا لی ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیلی فون کے ٹاور لگے ہوئے ہیں ان کی بھی اچھی خاصی ہائٹ ہے، ان کو بھی انہوں نے چیک نہیں کیا. ایون اس کے اوپر جو انڈیکیٹر لائٹ ہوتی ہے ریڈ والی، آپ چیک کروائیں کہ کسی ایک دو ٹاور کے اوپر لائٹ جل رہی ہو، ادر دیٹ میں نے کبھی لائٹ جلتی دیکھی نہیں.
وہ کہتی ہیں اب سے پہلے کسی کو اس کالونی کی تعمیر پر کوئی اعتراض نہیں تھا. جب تک کوئی حادثہ نہ ہو جائے معاملے کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا. ارشد قریشی کہتے ہیں یہ بات درست نہیں.
یہ جس علاقے میں ہم لوگ ہیں یہاں چار پانچ گلی آگے الاؤ نہیں ہے, آپ تھرڈ فلور کے بعد نہیں بنا سکتے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک یہاں پلازا بن رہا تھا تو سول ایویشن اتھارٹی والے آ گئے تھے اور اوپر اس کو فلور کو تعمیر نہیں کرنے دیا تھا, وہ گر گیا, اس کو گرا دیا گیا تھا. تو جس ایریے سے جہاز کا روٹ ہے اس جگہ پر تھرڈ فلور سے زیادہ نہیں پرمیشن ہے اور نہ لوگ بناتے ہیں. جبکہ ہماری مسجد ہے اس کے مینار پہ بھی ریڈ لائٹ لگی ہوئی ہے, حالانکہ وہ اس روٹ پہ نہیں ہے جہاں سے جہاز گزرتا ہے. اور میں پچھلے 30 سال سے دیکھ رہا ہوں یہ جہاز کا روٹ نہیں ہے. جہاز کا روٹ ہماری گلی سے تقریباً 5-6 گلی آگے سے جو روڈ گزر رہا ہے ادھر سے, اس کا کینٹونمنٹ کے اوپر سے. یہ آج جو جہاز آیا ہے یہ اپنے روٹ سے بھی الگ آیا ہے.
جبکہ میری لینڈ میں مقیم پی آئی اے کے ایک سابق سینئر اکاؤنٹ افسر عمران عثمانی کہتے ہیں کہ ان کے اپنے خاندان والے وہاں عسکری میں کئی منزلہ عمارت میں مقیم ہیں.
جہاں لینڈنگ کر رہا ہے وہاں آرمی کا پورا کینٹونمنٹ ہے اور پورے وہاں پر عسکری بنے ہوئے ہیں اور 10-10 منزلہ عمارتیں بنا دی ان لوگوں نے. وہی ایکچولی سول ایویشن کو وہاں پرمیشن نہیں دینی چاہیے کہ اپروچ کتنی ہے, کہاں سے جہاز آ رہا ہے. آپ دنیا کے جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں اس کے ارد گرد کم از کم 10 میل تک جو ہے وہ عمارتیں جو ہیں نہیں ہوتی, یا ہوتی ہے تو کم ہوتی ہے, یا پھر وہاں پہ جو انتظامات ہوتے ہیں. آپ نے اس علاقے میں جہاں لینڈ کر رہا ہے جہاز, جس سائڈ سے لینڈ کر رہا ہے اس سائڈ پر عمارتیں آپ تو دیکھیں کہ اگر وہاں پہ 2 منزلہ عمارت بننی چاہیے تو وہاں 6 منزلہ بنی. میں تو وہیں رہتا ہوں, کینٹونمنٹ میں رہتا ہوں میں.
عمران عثمانی نے طیارے میں تکنیکی خرابی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ طیارہ خرابی کے باوجود پرواز بھرے, اس لیے اس میں اچانک کوئی خرابی ہوئی. اور یہ بھی اچنبھے کی بات ہے کہ اس کے دونوں انجن فیل ہو گئے. وہ کہتے ہیں جہاز 10 برس پرانا تھا مگر جہازوں کی عمر میں 10 سال زیادہ نہیں ہوتے.
یہ 10 سال پرانا جہاز ہے جو غالباً ویتنام میں کھڑے تھے, ان جہازوں میں سے یہ لیز کیا تھا. یہ لیز جہاز ہے, اچھا 10 سال پرانا جہاز اتنا پرانا نہیں ہوتا.
چودھری اعظم بھی کہتے ہیں کہ جہاز کے پرواز بھرنے سے پہلے نوز سے ٹیل تک اس کا مکمل معائنہ کیا جاتا ہے, لیکن اگر اچانک اس سے پرندہ ٹکرا جائے تو ایویشن میں اسے موت کہا جاتا ہے.
جہاز کو ایئرکرافٹ انجینئر کلیئر کرتا ہے تو تمام آسپیکٹ چیک کرتا ہے, اس کی ٹیل سے لے کے نوز تک, اور نوز سے ٹیل اور ونگ سارے چیک ہوتے ہیں, کوئی خرابی تو نہیں ہے. باقی جتنے بھی انٹرنل معاملات ہیں ان کو بھی وہ چیک کرتا ہے. اب خدا نخواستہ جہاز لینڈ کر رہا ہے, لینڈ کرتے کرتے پرندوں کا ایک غول آتا ہے, غول جو ہے جہاز سے ٹکرا جاتا ہے, انجن سے ٹکرا جاتا ہے, تو یوں سمجھ لیں کہ ایویشن میں برڈ ہٹ جو ہے یہ اس کی موت ہوتی ہے. اور اس وقت جب جہاز کو برڈ ہٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ مجھے ابھی رپورٹ بتا رہے ہیں کہ جی وہ لینڈنگ کا پرابلم ہوا تھا. لینڈنگ کا پرابلم ایسا چیز نہیں ہوتا کہ لینڈنگ جو ہے پھنس گیا, بعض کا ایک جھٹکا دیا لینڈنگ گر جاتا ہے, خود ہی بائی گریوٹی گر جاتا ہے. تو لیکن اس سے پہلے چونکہ کافی پیچھے تھا جہاں سے اس نے اپروچ بنائی ہے, اور جہاں یہ گرا ہے آ کے بالکل رن وے سے ہارڈلی آدھے فرلانگ کے فاصلے پہ ہے.
واضح رہے کہ ایک قیاس یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جہاز سے پرندے ٹکرائے اور اس کے دونوں انجن فیل ہو گئے. تاہم پی آئی اے کے سی ای او ارشد ملک کہتے ہیں کہ حادثے کی اصل وجہ چھان بین کے بعد ہی سامنے آئے گی, ابھی صرف سوال ہیں. طیارے میں تکنیکی خرابی نہیں تھی تو عین اترنے کے وقت اس کے دونوں انجن کیسے فیل ہو گئے؟ کیا رہائشی عمارتیں اس کے لینڈ کرنے کی راہ میں حائل ہوئیں, یا پرندوں کا کوئی غول عین لینڈنگ کے وقت طیارے سے ٹکرا گیا؟ کسی بھی سوال کا جواب 3 دن سے پہلے ملنا ممکن نہیں, کیونکہ حکام کا کہنا ہے کہ چھان بین کے نتائج 3 روز سے پہلے سامنے نہیں آئیں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام. جیسا کہ اب آپ سب لوگوں کو علم ہو چکا ہے کہ یہاں امریکہ میں عید منائی جا رہی ہے, اور یہ عید ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب کہ پاکستان سے ایک بہت بری خبر ایئر کریش کی ملی جس میں بہت سے لوگ بہت سی جانیں گئیں اور ایک عجیب سی مایوس کن ایک صورتحال پہلے ہی تھی کرونا کی وجہ سے، اور اب اس پر ایک یہ سانحہ بھی پیش آ گیا۔ تو عید ظاہر ہے ویسے تو نہیں منائی جا رہی، لیکن نماز تو ادا ہوگی اور لوگ کسی نہ کسی انداز میں اس کو ایک مذہبی فریضے کے طور پر ضرور پرفارم کریں گے۔ یہاں ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر اس وقت موجود ہیں ہیوسٹن سے اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن کے پریزیڈنٹ سہیل سید صاحب، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں امریکہ میں اور خاص طور پر ہیوسٹن میں اس مرتبہ عید کی نماز کس طرح ادا ہو رہی ہے اور مسلمان کس طرح عید منا رہے ہیں۔ السلام علیکم سہیل سید صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سہیل سید صاحب، بہت افسوسناک ماحول میں اس مرتبہ عید آئی ہے، تو کیا اس وقت مسلمانوں کی اور خاص طور پر پاکستانیوں نے جب یہ خبر سنی ہے ایئر کریش کی بھی اور کرونا سے بھی وہ بڑے پریشان تھے، تو کس فضا میں یہ عید جو ہے وہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے؟
انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو پلین کریش ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے۔ وہ سارے مارٹر تھے، رمضان میں انتقال ہوا ہے اور وہ بھی جو ہے 29th جو ہے نائٹ پہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو اعلیٰ مقام دے۔ بہت ہی افسوس ہے، بہت ہی انتہائی دکھ کا مقام ہے، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے پاکستان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت نصیب کرے جو اس موقع پہ ہلاک ہو گئے۔ پاکستان میں اور پاکستان کی پاکستانی کمیونٹی جو پاکستان سے باہر ہے ان کے لیے انتہائی افسوسناک موقع ہے، لیکن زندگی رکتی نہیں ہے، چلتی ہے۔ اور عید کا جہاں تک تعلق ہے تو عید کے لیے آج ہماری فتویٰ کاؤنسل، دا کاؤنسل آف آل دا امامز آف آئی ایس ایز مساجد اینڈ نان آئی ایس ایز مساجد، ہم نے سب کو انوائٹ کیا ہے شام کو 8:45 PM ہیوسٹن ٹائم پہ، ٹو سی اف اینیبڈی ہیو ریسیوڈ اینی شہادہ آف مون سائٹنگ۔ واللہ عالم، مون سائٹنگ ہماری طرف سے تو ہوگی، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو عید جو ہے انشاءاللہ سنڈے کی پروبیبل جو ہے وہ سنڈے ہی ہے۔
ٹھیک، تو عید کو اس مرتبہ کس طرح، عید کی نماز کس طرح ادا ہوگی؟
عید کی نماز جو ہے نوافل میں آتی ہے، اس چیز کا ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عید کی نماز فرض نہیں ہے، اور جو ہے عید کی نماز میں یقیناً ہم لوگ سب انجوائے کرتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم نے جو ہے کیونکہ COVID-19 میں جو ہے کنگریشنل جو پریئرز ہیں، کانگریگیشنل پریئرز جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے، تو ہم نے یہ طریقہ کار یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو ہے ایک ویڈیو کریٹ کیا ہے جو کہ ہم نے پوری کمیونٹی ہسٹن میں ڈالا ہے، اور اینی بڈی ہو ڈز ناٹ ہیو ایکسیس ٹو اٹ دے کین گو ٹو اور ویب سائٹ isga.org, وہاں پہ وہ ویڈیو موجود ہے۔ اس ویڈیو میں پوری طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں گھر پہ، کیونکہ نماز سال میں دو دفعہ ہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہر آدمی کو، ہر ہماری سسٹرز کو پتہ نہیں ہوتا، بچوں کو بھی نہیں پتا کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو اس کو آسان کرنے کے لیے ہم نے ایک ویڈیو بنایا۔ یہ پوری انسٹرکشنل ویڈیو ہے، بہت ہی تفصیل سے بنی ہے، وہ 13 منٹ کی ویڈیو ہے، اور وہ ہم نے پوری کمیونٹی کو بھیجی کہ اس طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے ہم نے کہ آپ نماز 10:30 بجے سے پہلے پہلے فریش کر لیں، اس کے بعد گھر میں تکبیرات کہیے، اور پھر ہم ایک ورچوئل عید خطبہ جو ہے، جو اپنے ڈاکٹر حمزہ یوسف صاحب ہے، شیخ حمزہ یوسف فرام کیلیفورنیا زیتونہ کالج کے، ان کا خطبہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ٹیلی کاسٹ کریں گے، فیس بک لائیو کے اوپر بھی، اور جو ہے یوٹیوب کے اوپر بھی، اور ہمارے زوم کے اوپر بھی، تو لوگ جوائن کر سکتے ہیں خطبے لائیو کے لیے، خطبہ بھی سنیے، اور انفارچونیٹلی وی ول ناٹ ہیو کنگریگیشنل پریئرز ان ہیوسٹن، آئی ڈونٹ نو کہ ہیوسٹن کے باہر کیا انتظامات ہیں، پاکستان میں تو یقیناً عید کی اجتماع ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اس جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے ہم سب کو نجات دلائے۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ سہیل سید صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، تھینک یو، تھینک یو،
نو پرابلم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ये थे इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के सदर जनाब सोहेल सैयद, जो बता रहे थे कि ह्यूस्टन में नमाज ईद की अदायगी और किस तरह होगी और किस तरह यहाँ मुसलमान ईद को मनाएंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील। आप सुन रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम। अमेरिका में लोग ईद कैसे मना रहे हैं और ईद पर नमाज ईद कैसे अदा होगी, इस बारे में आपने अभी ह्यूस्टन से सोहेल सैयद साहब को सुना, जिन्होंने बताया कि ह्यूस्टन में मुसलमान किस तरह ईद की नमाज अदा कर रहे हैं या ईद मना रहे हैं, ख़ासतौर पर ऐसे में जबकि पाकिस्तान में एक सानहा हवाई जहाज़ के हादसे का पेश आया। तो ओवरऑल जो ख़ासतौर पर पाकिस्तानी हैं वो इस सुगवार हादसे पर अफसरदा भी हैं, पहले भी कोरोना की वजह से भी परेशान थे और अब ये एक और सानहा भी उनकी इस ईद को ईद पर असरअंदाज हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक, इस्लामिक सेंटर ऑफ नॉर्दर्न वर्जीनिया के प्रेसिडेंट हैं, टेलीफोन पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वर्जीनिया में इस मरतबा ईद मुसलमान किस तरह मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
डॉक्टर साहब कुछ बताइए कि कैसे यहाँ वर्जीनिया में ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है और किस अंदाज में।
वर्जीनिया में ताहाल गवर्नर साहब की तरफ से पाबंदी है कि चर्चेज और मसाजिद और ऐसे बड़े इदारे जहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन हो सकती है वो इकट्ठे ना करें, तो कानून की पाबंदी के पेश नजर हम भी ईद को उस कानून के दायरे में रहते हुए मना रहे हैं। पेशतर मसाजिद, वर्जीनिया काउंसिल ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया है कि मसाजिद जो है वो अपनी नमाज को लाइव ब्रॉडकास्ट कर दें और लोग अपने घरों में नमाज पढ़ लें। तो यूं होगा कि इस्लामिक सेंटर नॉर्दर्न वर्जीनिया जो है वो इमाम साहब अपनी नमाज पूरी लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे और वो तीन नमाजें होंगी जैसे कि आमतौर पर पहले यहाँ पर होता है, और लोग अपने घरों में जो है वो नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद में सिर्फ मस्जिद के जो अहलकार हैं वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे।
और वो कितने होंगे?
वो 10 से कम होंगे, क्योंकि तीन की तादाद मकसूद होती है अमूमन। तो और ये ईद जो है वो फर्ज कफाया है, अगर कम्युनिटी की तरफ से एक आदमी ने भी नमाज पढ़ ली तो वो कम्युनिटी की तरफ से फर्ज कफाया जो है वो अदा हो जाता है।
तो आप
लेकिन ईद के मौके पर लोगों को याद रखना चाहिए कि ईद सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, इसमें अपनी खुशियां बांटने का नाम है। तो हम सबको ये ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग हम में से इस वक्त किसी वजह से माली परेशानी या जो है ज़हनी परेशानी या जो भी उनको परेशानी है उसमें जिस तरह भी वो अपने हमसायों की अपने दोस्तों की मदद कर सकें उनको बढ़ चढ़ के जो है इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यही अल्लाह ताला का मकसूद है।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद फारूक, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू,
बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अस्सलाम
वालेकुम। ये थे इस्लामिक सेंटर ऑफ नॉर्दर्न वर्जीनिया के सदर मोहम्मद फारूक, जो बता रहे थे कि वर्जीनिया में इस मरतबा ईद किस अंदाज में मनाई जाएगी और नमाज ईद किस सूरत में लोग अदा करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
خلیجی ملکوں اور خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی، ثقافتی اور فوجی رابطوں کی تاریخ تو کافی اشنوں پر محیط ہے. حالیہ برسوں میں یہ تعلقات اور بھی مستحکم اور گہرے ہوئے ہیں. گزشتہ روز واشنگٹن کے دو ممتاز تھنک ٹینکس کے اشتراک سے اسی موضوع پر ایک نشست کا اہتمام کیا گیا اور پولی ٹیکٹ کے سینئر ریسرچر اور سی او عارف انصار اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے علاوہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈجنکٹ اسکالر ڈاکٹر فاروق حسنات بھی ہمارے ساتھ ہیں.